आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज।
विरासत भारत की। हमने अपने इस प्रोग्राम विरासत में आज तक आपको कई ऐसे जगहों की कहानी के बारे में बताया है जो भारत की विरासत कहलाती है। मगर भारत को अगर देखा जाए तो इसके सबसे ऊंचे शिखर पर कश्मीर की पहाड़ियां हैं और नीचे है कन्याकुमारी। कहते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। कश्मीर भारत माता का मस्तिष्क है तो कन्याकुमारी चरण। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य का प्राचीन शहर है। लेकिन इस शहर का नाम कन्याकुमारी ही क्यों है? इस नाम के पीछे भी एक पौराणिक कथा है जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षा और आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। किवदंती है, बहुत समय पहले बाणासुरन नाम का एक दैत्य हुआ करता था। उसने भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु कुवारी कन्या के अलावा किसी और से ना हो सके। शिव ने उसे मनोवांछित वरदान दे दिया। उसी कालक्रम में भारत में ही एक राजा हुए जिनका नाम था भरत। राजा भरत की 8 पुत्रियां और एक पुत्र था। राजा भरत ने अपना साम्राज्य 9 बराबर हिस्सों में बांट दिया। दक्षिण का हिस्सा जहाँ वर्तमान में कन्याकुमारी है, राजा भरत की पुत्री कुमारी को मिला। मान्यता है कि कुमारी को शक्ति देवी का अवतार माना जाता है। देवी कुमारी पांडे राजाओं की अधिशाष्टी देवी थी। देवी कुमारी ने उस दौर में दक्षिण में कुशलता पूर्वक राज्य किया था। कुमारी की हार्दिक इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो जाए। जब ये बात शिव को पता चली तो वो भी विवाह के लिए राजी हो गए। लेकिन देवश्री नारद चाहते थे कि बाणासुरन का अंत कुमारी के हाथों ही हो। इस विघ्न के चलते शिव और कुमारी का विवाह नहीं हो सका। इस दौरान भी बाणासुर को कुमारी की सुंदरता के बारे में पता चला तो वो सुनकर ही मोहित हो गया। उसने कुमारी को विवाह का प्रस्ताव पहुंचाया। कुमारी ने कहा यदि वो उसे युद्ध में हरा दे तो वो बाणासुरन से विवाह कर लेंगी। दोनों में युद्ध हुआ और बाणासुरन मारा गया। इस तरह देवी कुमारी ने उस दैत्य को मार कर वहां रहने वाले लोगों का जीवन सुखमय कर दिया। इसीलिए दक्षिण भारत के इस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है। मान्यता है कि जब शिव और कुमारी का विवाह अधूरा रह गया था तो वहां जो भी विवाह के लिए तैयारियां की गई थी वो सब रेत में बदल गई और इस तरह आधुनिक कन्याकुमारी शहर की नींव रखी गई। कन्याकुमारी में घूमने के लिए बड़े सारे मंदिर हैं, जिसमें पहला मंदिर है कुमारी मंदिर। तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है जहाँ देवी पार्वती के कन्या रूप को पूजा जाता है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न न हो पाने के कारण बच गए दाल चावल बाद में कंकड़ बन गए थे। इसके अलावा शंकराचार्य मंदिर भी यहीं पर स्थित है। कन्याकुमारी में 3 समुद्रों, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का मिलन होता है। इसीलिए इस स्थान को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। तट पर कांचीपुरम की श्री कांची कामकोटी पीठम का एक द्वार और शंकराचार्य का एक छोटा सा मंदिर है। यहीं पर 12 स्तंभों वाला एक मंडप भी है जहां बैठकर यात्री धार्मिक कर्मकांड कराते हैं। इसके अलावा सागर तट से कुछ दूरी पर मध्य में 2 चट्टानें नजर आती हैं। ये प्रतिमा प्रसिद्ध तमिल संत कवि तिरुवल्लर की है। वो आधुनिक मूर्ति शिल्प 5,000 शिल्पकारों की मेहनत से बनकर तैयार हुआ था। इसकी ऊंचाई 133 फुट है जो कि तिरुवल्लर द्वारा रचित काव्य ग्रंथ तिरुकुलम के 133 अध्यायों का प्रतीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको नागराज मंदिर देखने को मिलेगा। ये शहर नागराज मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का वैशिष्ट देखते ही बनता है। देखने में ये मंदिर चीन की वास्तुशैली के बौद्ध विहार जैसा लगता है। मंदिर में नागराज की मूर्ति आधार तल में है। यहाँ नाग देवता के साथ भगवान विष्णु एवं भगवान शिव की उपस्थिति भी है। कन्याकुमारी दक्षिण भारत के महान शासकों चोल, चेर, पांडे के अधीन रहा है। यहाँ के स्मारकों पर इन शासकों की छाप आप अभी भी देख सकते हैं। ये स्थान एक खाड़ी, एक सागर और एक महासागर का मिलन बिंदु है। यहाँ आकर प्रकृति के अनंत स्वरूप के दर्शन होते हैं। इस पवित्र स्थान को अलेक्जेंड्रिया ऑफ ईस्ट के नाम से विदेशी सैलानियों ने नवाजा था। यहाँ के लिए तिरुवनंतपुरम, जो कि 86 किलोमीटर दूर है, यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा है। जबकि दक्षिण रेलवे के तिरुवनंतपुरम कन्याकुमारी सेक्शन पर कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन है। हिमसागर एक्सप्रेस जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक ले जाने वाली ट्रेन हमारे देश की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है। नई दिल्ली से हिमसागर एक्सप्रेस में लगभग 56 घंटे लगते हैं। साथ ही ये शहर दक्षिण भारत के सभी महत्वपूर्ण स्थानों से सड़क मार्ग से भी जुड़ा हुआ है, यानी कि कन्याकुमारी तक पहुंचना आसान है, आप आराम से यहां जा सकते हैं। साथ ही यहां से आप सूर्योदय और सूर्यास्त का अनुपम नजारा भी देख सकते हैं। कहा जाता है कि यहां से जिस दिशा में सूर्य उगता है उसी दिशा में सूर्य अस्त भी होता है। भारत का अंतिम छोर कहे जाने वाले कन्याकुमारी की अद्भुत कथाएं हमने आपको आज सुनाई। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले अंक में लेकर कहानी किसी और विरासत की। तब तक के लिए सुनते रहिए अमर उजाला आवाज मेरी यानी दीक्षा के साथ।